रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। हिंदू कुश हिमालय संसदीय सम्मेलन काठमांडू में शुरू। जलवायु संकट कम करने के लिए साझा कूटनीतिक सहयोग मजबूत करने की बात पर राष्ट्रपति पोडेल ने दिया जोर। हमास द्वारा बंधक बनाए गए विपिन जोशी की रिहाई के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। भूस्खलन में दबकर म्यागदीप की राहुघाट जलविद्युत परियोजना के दो मजदूरों की मौत, पांच घायल। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के बीच आज वाशिंगटन में हुई वार्ता। अब समाचार विस्तार से। काठमांडू में आज से हिंदू कुश हिमालय संसदीय सम्मेलन शुरू हुआ है, जिसका मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना और हिमालयी क्षेत्र का संरक्षण करना है। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने जलवायु संकट को कम करने के लिए साझा कूटनीतिक सहयोग को मजबूत करने की बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हिमालय जंगल और कृषि योग्य भूमि से मिलने वाला पानी, ऑक्सीजन और उर्वरता जलवायु परिवर्तन के कारण संकट में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वैज्ञानिक तथ्यों और जनता की मांगों को आधार बनाकर जलवायु और जैविक विविधता संरक्षण नीतियां बनाना जरूरी है। परराष्ट्र मंत्री डॉ आरजू राणा देववा ने कहा कि जलवायु संकट अब एक दैनिक वास्तविकता बन चुका है और सभी देशों को कार्बन उत्सर्जन कम करने और जलवायु परिवर्तन के नुकसान को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। वन तथा वातावरण मंत्री एन बहादुर शाही ठकुरी ने कहा कि ये सम्मेलन हिमालयी क्षेत्र के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देशों के बीच साझा संवाद और नीति निर्माण का अवसर प्रदान करता है। ये दो दिवसीय सम्मेलन आज और कल चलेगा, जिसमें नेपाल सहित हिंदू कुश हिमालयी क्षेत्र के विभिन्न देशों के प्रतिनिधि सहभागी हैं। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि इसराइल में हमास समूह द्वारा बंधक बनाए गए नेपाली नागरिक विपिन जोशी की सुरक्षित और शीघ्र रिहाई के लिए नेपाल सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। आज उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से यह जानकारी देते हुए कहा कि यह सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि परराष्ट्र मंत्रालय और नेपाली दूतावास खाड़ी क्षेत्र में लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। विपिन की मां पद्मा जोशी और बहन पुष्पा जोशी ने इसराइल के राष्ट्रपति आइजक हर्जाग और संसद अध्यक्ष अमीर ओहाना से मुलाकात कर रिहाई की अपील की है। प्रधानमंत्री ओली ने पहले ही तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगान से चैत सात और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अलसीसी से फागुन 28 गते को फोन पर बातचीत कर इस मुद्दे पर ध्यानाकृष्ट किया था। विपिन जोशी 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के दौरान इसराइल में बंधक बना लिए गए थे। सरकार ने इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया है और मानवीय आधार पर रिहाई की मांग की है। प्रतिनिधि सभा की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति में विद्यालय शिक्षा विधेयक से संबंधित समिति सचिवालय द्वारा तैयार किया गया प्रतिवेदन पेश किया गया है। समिति की आज हुई बैठक में समिति सचिवालय ने प्रतिवेदन में दोहराए गए विषयों को हटाकर और असंगत विषयों में भाषा को परिष्कृत कर तैयार किए गए विद्यालय शिक्षा विधेयक से संबंधित प्रतिवेदन को पेश किया है। साथ ही आज की बैठक में शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय द्वारा विपन्न यानी आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को 2.5% आवास सुविधा देने के प्रस्ताव पर सांसदों की सहमति न बन पाने के कारण इस विषय पर आगामी बैठक में और चर्चा करके निर्णय लेने की तैयारी की गई है। समिति ने पेश किए गए प्रतिवेदन का अध्ययन करके भाद्र 5 गते को होने वाली बैठक में चर्चा करके विधेयक का प्रतिवेदन पारित करने की तैयारी भी की है। नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्वा वीयू क्रांतिकारी सहित 16 छात्र संगठनों ने संयुक्त रूप में तत्काल विद्यार्थी मैत्री विद्यालय शिक्षा आईन जारी करने की मांग की है। आज संयुक्त विद्यार्थी संगठन के प्रतिनिधियों ने प्रतिनिधि सभा की स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सूचना प्रविधि समिति के सभापति अमर बहादुर थापा को ज्ञापन पत्र सौंपकर इस मांग पर तुरंत ध्यान देने का अनुरोध किया। विद्यार्थी संगठन ने विद्यालय शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को समावेशी बनाने, 100% खुली प्रतिस्पर्धा के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करने की मांग रखी है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
बाजु दर्शन,
भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर, राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबु।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ हजुर।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहा नै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटिसीको डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा ने कहा कि कुछ शक्तियां पुराने राजनीतिक दलों के काम न कर पाने को लेकर अतिरंजित और नकारात्मक प्रचार कर समाज को भ्रमित करने की कोशिश कर रही हैं। पार्टी के शुभचिंतक संस्था समन्वय विभाग द्वारा केंद्रीय कार्यालय सानेपा में आयोजित तीज पर्व की शुभकामना और अंतर्क्रिया कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कार्यकर्ताओं से किसी भी भ्रम में न पड़कर पार्टी को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुमला में अब डायलिसिस सेवा शुरू हो गई है। इस सुविधा के शुरू होने से किडनी के रोगियों को अब दूरस्थ इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। प्रतिष्ठान के उपकुलपति डॉ पूजन रोकाया ने बताया कि ये सेवा किडनी के रोगियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। उन्होंने कहा, डायलिसिस सेवा स्थानीय तह पर उपलब्ध होने से रोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। लंपी स्किन रोग के प्रकोप से झापा जिले में अब तक 437 पशुओं की मौत हो चुकी है, जबकि 15,158 पशु इस बीमारी से प्रभावित हैं। पशु सेवा विज्ञान केंद्र झापा के आंकड़ों के अनुसार सावन महीने के अंत तक 3,804 पशु इस रोग से संक्रमित पाए गए थे। केंद्र की प्रमुख शीतल भट्टराई ने बताया कि अब तक 99,674 पशुओं को लंपी स्किन रोग के खिलाफ टीका लगाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि रोग पर नियंत्रण के लिए टीकाकरण अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। म्यागदी रघुंगा गांव पालिका में निर्माणाधीन राहुघाट जलविद्युत परियोजना के ऑडिट नंबर 1 के मुख्य सुरंग तक पहुंच मार्ग पर भूस्खलन होने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है और 5 अन्य घायल हो गए हैं। डीएसपी सूर्य बहादुर थापा के अनुसार मृतकों में एक नेपाली और एक विदेशी नागरिक शामिल हैं। उनकी पहचान अभी सुनिश्चित नहीं हुई है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया है। नेपाल रेलवे कंपनी ने जनकपुर जयनगर रेलवे के घाटे को कम करने के लिए मालवाहक यानी कार्गो रेल सेवा शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है। नेपाल रेलवे कंपनी के महाप्रबंधक निरंजन झा के अनुसार भारत सरकार द्वारा लगभग 10 अरब रुपए की लागत से निर्मित इस ब्रॉडगेज रेलवे लाइन पर यात्री सेवा के साथ साथ अब कार्गो सेवा भी शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में विभिन्न संस्थाओं के साथ पत्राचार किया जा रहा है और कुछ से सकारात्मक प्रतिक्रिया भी मिली है। वर्तमान में जयनगर भारत से जनकपुर धाम होते हुए महोत्तरी के विजलपुरा तक यात्री रेल सेवा संचालित है। नेपाल सरकार द्वारा भारत से खरीदे गए 2 इंजन और 4 बोगियों से ये सेवा दैनिक आधार पर चलाई जा रही है। हालांकि केवल यात्री सेवा से रेलवे को लाभ नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते कंपनी ने कार्गो सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। कार्गो सेवा शुरू होने से रेलवे की आय में वृद्धि होने की उम्मीद है। इससे स्थानीय व्यापार और उद्योगों को भी माल ढुआई की सुविधा मिलेगी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के बीच आज व्हाइट हाउस में एक उच्च स्तरीय वार्ता हुई। ये मुलाकात दोनों देशों के बीच रक्षा, आर्थिक सहयोग और यूक्रेन संकट पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अमेरिका द्वारा यूक्रेन को सैन्य सहायता जारी रखने पर चर्चा हुई। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में रूस समर्थित अलगाववादियों के खिलाफ यूक्रेनी सेना को अमेरिकी समर्थन का विषय प्रमुख था। यूक्रेन को प्राकृतिक गैस आपूर्ति और ऊर्जा बुनियादी ढांचे के विकास में अमेरिकी सहयोग पर सहमति बनी। सन 2019 में ट्रंप जेलेंस्की फोन कॉल को लेकर हुए इम्पीचमेंट विवाद के बाद ये पहली बड़ी द्विपक्षीय वार्ता थी। दोनों नेताओं ने इस मुद्दे को पीछे छोड़ने पर सहमति जताई। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन अमेरिका का महत्वपूर्ण साझेदार है, हम उनकी संप्रभुता और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध हैं। जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिकी समर्थन से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था और रक्षा प्रणाली मजबूत होगी। यूक्रेन पिछले कई वर्षों से रूसी आक्रमण और आंतरिक संघर्ष से जूझ रहा है। अमेरिका ने सन 2014 के बाद यूक्रेन को $3 अरब से अधिक की सैन्य सहायता प्रदान की है। पाकिस्तान में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने वाले संस्थान के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने बताया कि मौजूदा मॉनसून सीजन में अब तक 670 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 80 से 90 लोग अब भी लापता हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, मॉनसून के दौरान अलग अलग घटनाओं में अब तक लगभग 670 लोग मारे गए हैं जबकि 1000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने बताया कि 80 से 90 लोग अब भी लापता हैं। अगर इनका जल्द पता नहीं चला तो इन्हें भी मृतकों की लिस्ट में शामिल करना पड़ेगा। एनडीएमए प्रमुख के अनुसार मॉनसून की बारिश का सिलसिला 23 अगस्त तक जारी रहेगा और इस दौरान हालात और बिगड़ सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि क्लाउड बर्स्ट जैसी घटनाएं और हो सकती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 23 अगस्त से महीने के अंत तक और सितंबर के पहले 10 दिनों में मॉनसून के दो और चरण आने की संभावना है। उन्होंने कहा, 10 सितंबर के बाद हालात धीरे धीरे सुधरने लगेंगे और सितंबर के अंत तक सामान्य हो जाएंगे। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हिंदू कुश हिमालय संसदीय सम्मेलन काठमांडू में हुआ शुरू। जलवायु संकट कम करने के लिए साझा कूटनीतिक सहयोग मजबूत करने की बात पर राष्ट्रपति पोडेल ने दिया जोर। हमास द्वारा बंधक बनाए गए विपिन जोशी की रिहाई के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। भूस्खलन में दबकर म्यागदी की राहुघाट जल विद्युत परियोजना के दो मजदूरों की मौत, 5 घायल। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के बीच आज वाशिंगटन में हुई वार्ता। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।